ये आकाशवाणी है। अब आप शशांक कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की दो दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को बेहद सफल बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई मिली है। दोनों देशों के बीच 8 समझौता ज्ञापनों पर आदान प्रदान हुआ। यात्रा के दौरान श्री मोदी ने प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में उन्होंने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, ऋण सुविधा समझौता, राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए वाणिज्य और असैन्य जहाजों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस ने अपने संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर उन्हें मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मिलने का अवसर मिला। श्री मोदी ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत मॉरिशस संबंधों के विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने AI, क्षमता निर्माण, सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने उन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने पर मॉरिशस का आभार व्यक्त किया। भाजपा ने प्रधानमंत्री को 21 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाला विश्व का अद्वितीय नेता बताया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इन 21 देशों में 9 इस्लामिक देश हैं, जिनमें मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और अफगानिस्तान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज श्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होने से यह पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भारत के रिश्ते आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक स्तर पर काफी आगे बढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के समावेशी और सतत विकास के लिए समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान पर बल दिया। चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 72वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पंजाब विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुसार नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया। विधेयक का उद्देश्य तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम 1948 में संशोधन करना है। ये खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शेल गैस शामिल हैं। वर्तमान अधिनियम के अनुसार कोयला, लिग्नाइट, हीलियम खनिज तेलों में शामिल नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आर्थिक विकास और ऊर्जा का उपयोग बहुत अधिक निर्भर है और देश में प्रतिदिन 55 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है। सरकार ने कहा है कि देश में 776 जिलों में से 773 में 5G सेवाएं उपलब्ध हैं। लोकसभा में संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने देश में 5G सेवाओं को लेकर कई नई पहल की है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार सेवाओं प्रदाताओं में अब तक 4,69,000 5G बेस ट्रांसमीटर ट्रांसरिसीवर स्टेशन स्थापित किए हैं। जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा संरक्षण पर अधिकार प्राप्त कार्यबल की 14वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने परियोजना के समयबद्ध निष्पादन, प्रदूषण नियंत्रण उपायों और अंतर मंत्रालय समन्वय को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक दांडी मार्च में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च ने आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को प्रज्वलित किया था। ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, वहीं शुभमन गिल पहले स्थान पर बने हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच और 76 रन बनाने वाले रोहित को 2 पायदान का फायदा हुआ है। टूर्नामेंट में 218 रन बनाने वाले विराट कोहली शीर्ष 5 में बने हुए हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में कुलदीप यादव तीसरे और रविन्द्र जडेजा 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।